उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल में की एक पुस्तक है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए जिसे आपने उन्हें दिया है, ताकि हम सब एक साथ बैठकर फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हम अय्यूब की पुस्तक से आज जो कुछ सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के लिए आत्मिक आशीष का कारण बन सके। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश और चिंतित हैं, परेशान या तनाव में हैं। आप उन्हें भी अपनी शांति और चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि एक एक जीवन आप में बलवंत हो सके। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अय्यूब की पुस्तक उसके 11 अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। आज का विषय है सोपर का पहला वाद। जैसा कि हमने देखा है कि अय्यूब के तीन मित्र थे और तीन मित्रों में से पहला एलीपज, उसका वाद हमने देखा, दूसरा विलदत, और अब हम अय्यूब के अंतिम मित्र से भेंट करते हैं। उसका नाम सोपर है और वह विधि पर चलने वाला है। उसके विचारों में परमेश्वर मापदंड व्यवस्था के आधार पर काम करता है। वह दिखाता है कि उसे ज्ञान है कि परमेश्वर किसी परिस्थिति में क्या करता है। वह रूढ़िवादी विलदत से भिन्न है। विलदत कहता है कि हमें अतीत के अनुभवों से सीखना है। उसका मस्तिष्क विज्ञान पर आधारित था। वह उस वैज्ञानिक के समान था जो चट्टानों को देखकर पृथ्वी की आयु ज्ञात करना चाहता है। सोपर का मस्तिष्क भी विज्ञान पर आधारित है, परंतु वह व्यवस्था पर अधिक ध्यान देता है। यदि उसकी तुलना आज के युग से की जाए तो वह नास्तिक कहलाएगा। उसका मानना था कि ब्रह्मांड नियमों के आधार पर चलता है। नियम बनाए न जाए तो नियम कहां से आएंगे। अतः स्पष्ट है कि कोई है जिसने नियम बनाए, परंतु सोपर केवल यही मानता है कि ब्रह्मांड नियमों का ही पालन करता है। सोपर उस मनुष्य की नाई है जो कहता है मुझसे और पूछो। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि उसके पास सबका उत्तर है। वह विधि की पुकार है। उसके विचार में परमेश्वर नियमों के अधीन है और अपने नियमों द्वारा उत्पन्न परिस्थिति के अतिरिक्त वह काम नहीं करता। वह संभवतः एक वरिष्ठ नागरिक है और सैद्धांतिक निर्णय देता है, अर्थात विलदत से अधिक अभद्र और मुंहफट मनुष्य है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? वह कहता है कि अय्यूब शब्दों से खेलकर अपना पाप छिपा रहा है। अय्यूब ने उन्हें पहले भी समझाया कि उसके जैसी दुखद स्थिति में मनुष्य ढोंग नहीं रचेगा। सोपर उसके इस तर्क को अनसुना करके कहता है कि अय्यूब बातों द्वारा परिस्थिति से बचना चाहता है। यह सच है कि कुछ मनुष्य बातों के धनी होते हैं और शब्दों से खेल कर जीत जाते हैं। कुछ वकील इसी प्रकार कोर्ट में से केस जीतते हैं, जो वास्तव में न्याय नहीं वकील के शब्दों का चतुर खेल होता है। परंतु अय्यूब के साथ ऐसा नहीं था। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? सोपर तो एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वह अय्यूब पर झूठ कहने का दोष लगाता है, क्या तेरे बड़े बोल के कारण मनुष्य चुप रहे? वह उस पर ढोंग रचने का दोष लगाता है और अब वह उसे झूठा भी कहता है। यह तो विलदत से भी अधिक अशिष्ट है। विलदत अय्यूब को ढोंगी कहता था, परंतु उसने उसे झूठा नहीं कहा था। सोपर परमेश्वर के साथ होने की पवित्रता को दर्शाएगा। वह सोचता है कि उसे किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के काम का ज्ञान है। निसंदेह वह परमेश्वर के साथ है और अय्यूब परमेश्वर से दूर है और नहीं जानता कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अतः सोपर सोचता है कि अय्यूब को उसकी बात मानना है, क्योंकि उसका वचन अंतिम है और परमेश्वर के वचन के सदृश है। अय्यूब 11 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, तू तो यह कहता है मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले। परमेश्वर चुप है तो सोपर परमेश्वर का वक्ता बनता है। कुछ समय पूर्व मुझे किसी ने बड़ा ही अशिष्ट पत्र लिखा और दोष लगाया कि मैं अज्ञानी और सिद्धांतवादी ही नहीं, मुझ में आत्मिक विवेक भी नहीं है। अपनी बात पूरी कर लेने के बाद उसने लिखा, अब मैं देखूंगा कि आप पवित्र आत्मा की वाणी सुनेंगे या नहीं। वह सोचता था कि वह पवित्र आत्मा की वाणी है और यदि मैं उसकी बात नहीं सुनूं तो मैं परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता हूँ। यह अति रोचक बात है। उसका पत्र पढ़कर मैंने निश्चय जान लिया कि वह जिस बात का मुझे दोष दे रहा है वही बात स्वयं कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि उसे उस भेद का ज्ञान है जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, परंतु वह मेरे लिए सहायक नहीं सिद्ध हुआ। उसका पत्र कूड़े में गया क्योंकि उसमें मेरे लिए कोई संदेश नहीं था। इसी प्रकार मेरे विचार में सोपर के पास अय्यूब के लिए संदेश नहीं था। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है, इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। वह अय्यूब से जो कहता है वह सांत्वना के शब्द नहीं थे, वह तो वास्तव में उस पर प्रहार करता है। वह कहता था कि उसके कष्ट तो अभी अंधे ही हैं। यह बड़ी कठोर बात है। वह कहता है कि उसके कष्टों से प्रकट होता है कि वह इतना बुरा होगा, उसके मित्रों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मेरे प्रियो, सोपर अय्यूब किसी परिस्थितियों में भी किसी भी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा। हमें स्मरण रखना है कि अय्यूब एक रोगी है जो घोर कष्ट उठा रहा है और उसकी दशा ऐसी है कि वह कभी भी मर सकता है और कभी कभी तो वह आशा भी करता है कि वह मर जाएगा। अय्यूब 11 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? यह एक महान और अद्भुत बात है, परंतु कौन इसे नहीं जानता? अय्यूब उससे आगे चलकर कहेगा कि यह तो सभी जानते हैं, परमेश्वर को कोई खोज नहीं सकता, परमेश्वर स्वयं प्रकट होता है। परमेश्वर को जानने का एकमात्र उपाय है कि वह प्रसन्न होकर हम पर स्वयं को प्रकट कर दे। मैंने उसके प्रकटीकरण से यही निष्कर्ष निकाला है कि उसने हमें जो प्रकाशन प्रदान किया है वह उसका अंश मात्र ही है और हम ऐसे भयभीत और उलझन में हैं कि सोचते हैं कि उसने हमें और अधिक प्रकाशन क्यों नहीं दिया। मेरे प्रियो, आप उसकी खोज करके उसे पा नहीं सकते। अंतरिक्ष में जाने वाले रूसी वैज्ञानिकों ने कहा था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर भी परमेश्वर को नहीं देखा। अतः परमेश्वर है ही नहीं। हम यंत्रों द्वारा भी परमेश्वर को खोज नहीं सकते। कोई यह सोचे कि परमेश्वर को खोज पाना संभव है तो वह मूर्खता का विचार है। मेरे प्रियो, मनुष्य खुर्दबीन या दूरबीन द्वारा परमेश्वर को नहीं देख सकता या नहीं खोज सकता। परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होता है। सोपर की यह बात गहरी है, परंतु अय्यूब के लिए यह नई बात नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। वह परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें बताता है, परंतु अय्यूब के लिए ये सब निरर्थक हैं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। सोपर यह बात वह अय्यूब के विषय में कहता है, अपने विषय में नहीं। अपनी समझ में तो उसके पास सब उत्तर है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 11 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। ध्यान दीजिए, वह फिर अय्यूब को कुछ छिपाने या जीवन में गुप्त पाप का दोषी ठहराता है। उसके तीनों मित्रों का यही विचार था कि वह कुछ छिपा रहा है। अय्यूब के समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किस बात का त्याग करे, परंतु हम देखेंगे कि ऐसी बात थी। अय्यूब 11 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। सोपर कहता है, तू अपने जीवन में पाप को समझ, संघर्ष मत कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और तेरा पुनरुद्वार होगा, अर्थात करेगा। अय्यूब 11 अध्याय के 20 पद में लिखा है, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अंत में वह अय्यूब से कहता है, यदि तू अपने गुप्त पाप का अंगीकार नहीं करेगा तो एक समय आएगा कि परमेश्वर तुझे दंड देगा। वह अय्यूब के लिए पूर्ण दंड की भविष्यवाणी करता है। सुपर का भाषण अब समाप्त होता है और यह वास्तव में अय्यूब पर शाब्दिक आक्रमण था। अय्यूब के मित्रों ने अपनी अपनी बात कह दी। अब अय्यूब का प्रतिवाद है जो इस पुस्तक का सबसे लंबा वाद होगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 12 में आते हैं और इसका विषय है अय्यूब का प्रतिवाद। अय्यूब के इस लंबे वाद के साथ वाद विवाद का पहला सत्र भी समाप्त होता है। स्मरण रखें, अय्यूब के युग में मनुष्य बौद्धिक वाद विवाद में आनंद लेते थे। आज बुद्धि की अपेक्षा खेलकूद में शारीरिक बल प्रदर्शन का आनंद लिया जाता है। हम अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। यह एक अति उत्तम व्यंग है। अय्यूब कहता है, तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारे पास सब उत्तर है और ज्ञान तुम्हारे मरने पर समाप्त हो जाएगा। वे इस भाव में विवाद कर रहे थे कि जैसे अय्यूब मूर्ख है और उन्हीं के पास सब उत्तर है। अय्यूब 12 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ, कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो। अय्यूब का ज्ञान उनसे कम नहीं था। यहाँ समस्या यह है कि ये सब प्रसंग अपना ज्ञान प्रकट नहीं कर रहे थे। इन वाद विवादों में एक महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर ध्यान दें और उसकी बाट जोहें। अय्यूब को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा ये तीनों अय्यूब में औचित्य प्रदर्शन की आत्मा जगा रहे थे। दूसरे शब्दों में उनके वाद अय्यूब के प्रतिवाद के लिए विवश कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने दयावन, अनुग्रहकारी और करुणा निधान परमेश्वर की चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल नियम पर चलने वाले परमेश्वर की चर्चा की। वह नियमों के साथ साथ अनुग्रह और दया का परमेश्वर भी है। उन्होंने अनुभव, प्रथाओं और विधि विधान का विवेचन अवश्य किया, परंतु सत्य की चर्चा नहीं की। जब उन्होंने अय्यूब को अपराधी ठहराया तो स्वाभाविक था कि वह अपना बचाव करता और कहता कि वह निर्दोष है। जिस पल वह स्वयं को न्यायोचित ठहराता है, उसी पल वह परमेश्वर को न्यायोचित नहीं कहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब परमेश्वर को गलत कह रहा है, उसे आलोचना का पात्र दर्शा रहा है। आज अनेक जन विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। उसके मित्रों के लिए आवश्यक था कि वे अय्यूब को स्वयं का दोष खोजने और परमेश्वर का औचित्य देखने के लिए प्रेरित करते। परमेश्वर ने अपने वचन में उनका वाद विवाद लिखा क्योंकि वह अपना सत्य प्रकट करना चाहता था। अय्यूब की बातों से ज्ञात होगा कि वह आत्मा के टूटने और मन की दीनता से कितना दूर था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर प्रभावित होती है। उसके मित्र उसे उस स्थान पर नहीं ला पाए कि वह पौलुस की नाई कहता, जिसे हम रोमियो 7:18 में पढ़ते हैं, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। 1 कुरिन्थियों 15:10 में कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जी हाँ, आज अनेक विश्वासी गौरव से कहते हैं कि वे क्या हैं, वे क्या क्या करते हैं, वे कितना दान देते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि परमेश्वर लेने वाला है और वे देने वाले हैं, और वे परमेश्वर से बड़े हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की गवाही देने में चूक गए हैं। हम असंख्यों को यीशु के बारे में सुना दें। जब तक हम स्वयं को दोषी और परमेश्वर को उचित नहीं ठहराएंगे और परमेश्वर की स्तुति समान नहीं करेंगे, हमारी गवाही अर्थहीन होगी। इस पुस्तक में यह एक महान शिक्षा है। आइए हम पढ़ें अय्यूब 12:4-5 में। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। अय्यूब रोगी होते हुए भी इन तीनों का सामना कर रहा है। वह उनसे कहता है, तुम लोगों को तो किसी प्रकार का कष्ट है ही नहीं, इसलिए तुम मुझे परामर्श देते हो और मैं गिर रहा हूँ। तुम्हारे पास मुझे ढाड़स देने को कोई भी शब्द नहीं है। मेरे प्रियो, मैं वर्षों से प्रभु की सेवा में हूँ और अब मुझे यह तथ्य समझ में आता है कि हमारे जीवन में एक व्यवसायिक प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है। मैं किसी रोगी या मरणहार मनुष्य से भेंट करने अस्पताल में जाता था और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता, परमेश्वर आपके साथ होगा, और उसके लिए प्रार्थना करके कहता, परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। इसी प्रकार एक दिन ऐसा आया जब मैं अस्पताल गया, किसी रोगी से भेंट करने नहीं, परंतु स्वयं ही रोग सया पर लेटने के लिए। अब जब कोई मेरे लिए प्रार्थना करने आया और प्रार्थना करके चला गया, तब मैं बाहर नहीं गया, वहीं लेटा रहा। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति सर्वथा भिन्न होती है। अब मैं एक रोगी के स्थान पर था, और ऐसी स्थिति में आपको एक सहायक, एक ढाड़स बंधाने वाले की आवश्यकता है। यही अय्यूब की भी आवश्यकता थी। शेष अध्याय में अय्यूब कहता है कि उसके मित्रों में ऐसा उत्तम ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले मात्र वे ही नहीं है। अय्यूब मनुष्य के जीवन एवं कामों में परमेश्वर के सामर्थ्य को समझता था। अय्यूब में कड़वाहट और कटाक्ष व्याप्त हो गए थे। उसके मित्रों ने उसे कोई सहायता नहीं दी थी। वह सीधा परमेश्वर से याचना करने के लिए तरस रहा था। हम अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, उसके मित्रों ने उसे कोई नई बात नहीं बताई। उन्होंने जितना ज्ञान प्रदर्शन किया वह सब तो अय्यूब पहले से ही जानता था। वे अय्यूब की सहायता करने में असफल रहे। आगे लिखा है अय्यूब 13 उसके 3 पद में, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। अय्यूब अपने मित्रों को अनदेखा करके सीधा परमेश्वर के पास आना चाहता था। वह परमेश्वर से विवाद करना चाहता था। काश उस समय कोई होता जो अय्यूब को परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के बारे में बताता और यह भी बताता कि परमेश्वर उसकी सहायता करने को कैसा तत्पर है। अय्यूब 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सब के सब निकम्मे वैद हो। वह फिर कहता है कि उसके मित्र उसकी समस्या को समझ नहीं पाए और उसके लिए सहायक नहीं बन सके। वे उस डॉक्टर के समान थे जो मधुमेह के रोगी के फेफड़े निकालने का सुझाव दे रहे थे। वे वस्तु स्थिति को समझ ही नहीं पाए। अय्यूब 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, भला होता है कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। अय्यूब उन्हें सुझाव देता है कि निरर्थक बातें करने से तो अच्छा होगा कि तुम सब चुपचाप रहो। उनका चुप रहना उनकी बातों से अधिक बुद्धिमानी का काम होगा। अय्यूब 13 अध्याय के 6 और 7 पद में आगे लिखा है, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? अब वह उन्हें फटकारता है। उसने कहा कि उस पर महापाप की दोष लगाते हुए तो उन्होंने परमेश्वर का स्थान ले लिया। वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व यथोचित रूप से नहीं कर रहे थे। अय्यूब तो जानता था कि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि नहीं हैं। यदि वे अय्यूब को अपनी स्थिति का बोध करवा पाते तो अय्यूब को उनसे कुछ सहायता मिलती, परंतु उन्होंने तो उसे प्रतिवादी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह विवाद में पड़ गया और स्वयं को निर्दोष ठहराने का प्रयास करने लगा। यह तो परमेश्वर के निमित्त उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ही दोषी है। अय्यूब 13 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। अय्यूब कहता है कि उनके इस भ्रष्ट प्रतिनिधित्व के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देगा। आगे लिखा है अय्यूब 13 उसके 11 से 14 पद में, क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अय्यूब का विश्वास खरा है। उसने अपने मित्रों का प्रकोप सहन किया जो अब उसके लिए बैरी थे, जैसा हम आगे देखेंगे। अय्यूब 13 अध्याय के 15 पद में लिखा है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह पद अय्यूब के विश्वास की एक महान अभिव्यक्ति है। उसके मित्र उसे किसी दैहिक महापाप का दोषी ठहरा रहे थे, जैसे अनैतिकता या अनिष्ठा आदि, परंतु अय्यूब में ऐसा कोई भी दोष नहीं था। अब यहाँ उसकी समस्या की जड़ प्रकट होने लगती है। अय्यूब कहता है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में आकर स्वयं का बचाव करना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में तो आप केस हार जाएंगे। उसकी उपस्थिति में तो आप केवल दोष को ही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वह आपको जानता है। आप परमेश्वर के समक्ष अपना वकील खड़ा नहीं कर सकते कि वह विवाद करके आपको निर्दोष सिद्ध करे। ऐसा कोई भी वकील नहीं है जो इस तथ्य को असिद्ध करे कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक भी धर्मी नहीं है और जो पाप करेगा वह अवश्य मरेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वकील कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यहाँ आपको वह नहीं बचा सकता और न ही आपका न्यायी निर्बुद्धि और कोमल हृदय का है। आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे जो जगत का सृजनहार और नैतिक शिक्षा और शासक है। उससे मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता है। एकमात्र काम जो किया जा सकता है वह है कि उसके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके उसकी दया के भरोसे स्वयं को रख दें। आपको तब पता चलेगा कि परमेश्वर का सिंहासन दया का आसन है, क्योंकि उस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों का दंड चुका दिया है। मेरे मित्रों, दंड से बचने का एकमात्र मार्ग यही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अय्यूब को किसी की घोर आवश्यकता है कि परमेश्वर के समक्ष उसका अभियोग प्रस्तुत करे और उसे परमेश्वर से विवाद करने से बचाए। कोई उसे बताए कि वह परमेश्वर की दया पर निर्भर कर सकता है। इस पुस्तक में हमारे लिए एक अति उत्तम शिक्षा है कि हमारा एक वकील, हमारा एक मध्यस्थ कर्ता प्रभु यीशु है, जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाता है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सब आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे एवं सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा मीत। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा मीत। उसकी महिमा में गूंजे हमारा संगीत, तभी तो होगी हमारी हमेशा।